चाहत पूरे दिन जॉब ढूंढने के बाद घर आ चुकी थी। वो वॉशरूम के बाहर खड़ी अपनी माँ के बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी, जबकि अंदर निशा एक पल के लिए फ्रीज हो गई जब उसने देखा कि उसकी खांसी में खून निकल रहा था। वहीं दूसरी तरफ चाहत बार बार उसे बाहर आने के लिए आवाज़ लगा रही थी। चाहत ने फिर से दरवाज़ा खटखटाते हुए तेज़ आवाज़ में कहा, मम्मा आप ठीक तो हैं? आप बाहर क्यों नहीं आ रही? मुझे टेंशन हो रही है, आप कोई जवाब भी नहीं दे रही हैं। चाहत की आवाज़ सुनकर निशा का ध्यान टूटा। उसने जल्दी से अपने हाथ और मुंह को धोया और खुद को नॉर्मल करते हुए जवाब में कहा, इतनी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रही है, मैं कोई जवाब दूंगी भी तो तुझे सुनाई नहीं देगा। दो मिनट का वेट नहीं होता तुझसे, अगर इतनी जल्दी लगी थी तो पहले तू चली जाती ना। निशा की आवाज़ सुनकर चाहत ने राहत की सांस ली। उसने जवाब में कहा, कोई बात नहीं मम्मा, आप अपना टाइम ले लो, मैं वेट कर लूँगी। अपनी बात कहकर चाहत वहाँ से जाने को हुई, तभी निशा ने दरवाज़ा खोला। निशा ने बाहर आते ही कहा, जा अब चली जा। चाहत ने उनकी बात पर हामी भरी और बाथरूम में चली गई। जब वो अंदर गई तो बाथरूम क्लीन था। निशा ने इस बात का खास ख्याल रखा था कि कहीं गलती से भी उसकी खांसी से निकला ब्लड का कोई भी छींटा वहां न रह जाए। चाहत को भी कोई डाउट नहीं हुआ, उसने वॉशरूम यूज़ किया और कुछ देर में बाहर आ गई। अब वो अपनी फैमिली के साथ बैठकर अपने फेवरेट मटर पुलाव एन्जॉय कर रही थी। चाहत ने अपनी नानी की तारीफ करते हुए कहा, नानी आप होते हो तो मुझे सच में बहुत अच्छा खाना खाने को मिलता है, वरना मम्मा तो मोस्टली सिंपल फूड ही बनाती है। चाहत ने ये बात काफ़ी हल्के तरीके से कही थी, लेकिन दिल ही दिल में निशा को बुरा महसूस हुआ। अपनी ख़राब तबीयत के चलते वो खाना भी बहुत मुश्किल से बना पाती थी, लेकिन चाहत इस बारे में कुछ नहीं कहती थी। उनकी आंखें नम होने लगी और उन्होंने अपने मन में कहा, मैं बस तुम पर बोझ बनने के अलावा और कुछ नहीं रह गई चाहत, भगवान भी ना जाने हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। पहले मैं ठीक से तुम्हारी परवरिश नहीं कर पाई, तो फिर अब पता नहीं ये कौन सी नई बीमारी लग गई। आई होप मैं नॉर्मली हूँ, वरना मेरी चाहत मेरे इलाज के पैसे कहाँ से जुटा पाएगी। इससे अच्छा तो मैं मर जाती तो सही रहता। सोचते हुए निशा की आंखों से कब आंसू बहने लगे उसे एहसास तक नहीं हुआ। चाहत ने निशा को रोते हुए देखा तो वो उसके गले लग गई और उसे सहलाते हुए कहा, अरे मम्मा आप बुरा क्यों मान रहे हो, आप सिंपल खाना भी बहुत टेस्टी बनाते हो। बस कर बटरिंग करना, मैं तेरी वजह से नहीं रो रही हूँ, मुझे बस अपने बचपन की याद आ गई जब मम्मा हमें सिंपल खाना देती थी, और अब देखो अपनी नातिन के लिए कितना अच्छा अच्छा खाना बनाकर रखती है, निशा ने हंसते हुए कहा। उनकी बात सुनकर चाहत ने तिरछी निगाहों से पार्वती की तरफ देखा। पार्वती ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया। चाहत ने उन्हें देखकर मुंह बिगाड़ा और बच्चों जैसा चेहरा बनाकर कहा, वेरी बैड नानी। ऐसे ही बातों बातों में उनका डिनर हो गया और कुछ ही देर में वो बिस्तर पर थे, लेकिन इन तीनों की आंखों से नींद कोसों दूर थी। कमरे में अंधेरा था, इस वजह से तीनों को यही लग रहा था कि उन्हें छोड़कर बाकी दो लोग सो चुके हैं। निशा ने करवट बदलते हुए अपने मन में कहा, हे भगवान मैंने हमेशा जो भी मांगा है अपनी बेटी के लिए मांगा है, पर आज खुद के लिए मांग रही हूँ। प्लीज़ मुझे ऐसा कुछ मत करना जिसकी वजह से मैं अपनी बेटी पर बोझ बन जाऊँ। इतनी कम उम्र में वो पहले ही काफ़ी दुख झेल रही है। वहीं पार्वती जी की नज़रें सीलिंग पर जमी हुई थीं। उन्होंने मन ही मन बुदबुदाते हुए कहा, तेरे पापा ने हमेशा तेरे भाई को ज़्यादा लाड प्यार से पाला, उसे तुझसे ज़्यादा पढ़ाया, और आज उसने मुझे घर से निकाल दिया। जिस बेटी को उन्होंने बोझ समझा आज उसी पर मैं बोझ बनी हुई हूँ। काश वो जिंदा होते तो उन्हें दिखा पाती कि आपका होनहार लायक बेटा जिसे आपने इतने प्यार से पाला था वो किसी काम का नहीं, और जिस बेटी को आपने उसकी पसंद की शादी करने की वजह से दूर कर दिया था आज वही अपनी माँ का सहारा बनी हुई है। पार्वती जी निशा के बारे में सोच रही थी, निशा चाहत के बारे में सोच रही थी, तो वहीं चाहत की आंखें जरूर बंद थीं, लेकिन उसे कल की चिंता सता रही थी। चाहत ने अपने मन में कहा, थोड़ी बहुत सेविंग है उससे कुछ दिन निकल जाएंगे, तब तक जॉब मिल ही जाएगी। श्रद्धा से मिलकर बात करती हूँ, वो मेरी हेल्प कर देगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो उसे कुछ पैसे उधार ले लूँगी और बाद में वापस कर दूँगी। अपने ख्यालों में खोए हुए वो तीनों कुछ ही देर में नींद के आगोश में समा चुकी थीं। आयुष अपने मॉम डैड मिस्टर विजय ओबरॉय और शिवानी ओबरॉय के साथ डिनर कर रहा था। वो वहाँ पर प्रेजेंट ज़रूर था, लेकिन उसके दिमाग में यही ख्याल चल रहे थे कि ऐसा क्या हुआ होगा जो आहान उस डिनर गैदरिंग में नहीं आया। काफ़ी देर तक चुप रहने के बाद आयुष से रहा नहीं गया, उसने सब पूछने का सोचा। आयुष ने विजय ओबरॉय की तरफ देखकर कहा, क्या मैं जान सकता हूँ कि भाई? आयुष बोल रहा था तभी शिवानी ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, मैंने बताया तो था आहान ज़्यादातर बिजी रहता है, वो पार्टी में आ जाएगा। शिवानी समझ गई थी कि आयुष मिस्टर ओबरॉय से क्या पूछने वाला है। वहाँ एक और लड़ाई ना हो इसलिए शिवानी ने तुरंत बात को संभाल लिया। ऑलरेडी शिवानी और आहान के आपसी मतभेद में वो पिसकर रह जाती थी। विजय ना समझ नहीं थे आयुष किस बारे में बात करना चाह रहा था, वो समझ गए थे। उन्होंने उसे तीखी लुक दी और फिर कहा, चलो तुम यहाँ आ ही गए हो तो धीरे धीरे सब समझ जाओगे। तुम्हारे भाई ने अपनी अलग कंपनी खड़ी की, AA इंडस्ट्रीज ने अपना अच्छा खासा मुकाम हासिल कर लिया और उस वजह से ओबेरॉय इंडस्ट्री नीचे आ गई। जानबूझकर वो मेरा राइवल बना और मेरी कंपनी को गिराया। अब तुम पर डिपेंड करता है कि तुम अपने भाई को ज्वाइन करके मेरे राइवल बनते हो या अपने पापा का सहारा बनकर हमारी कंपनी को ऊंचा उठाते हो। विजय ने कोई सीधा सवाल नहीं पूछा था। अगर आयुष आहान को ज्वाइन करता तो वो अपने पापा का राइवल बन जाता, और अपने पापा को ज्वाइन करता तो अपने भाई का। आहान और मिस्टर ओबेरॉय के बीच की लड़ाई से वैसे भी शिवानी काफी परेशान थी। वो नहीं चाहती थी कि आयुष और मिस्टर ओबेरॉय के बीच का रिश्ता भी बिगड़े और उसे बेवजह सफर करना पड़े। बात को संभालते हुए शिवानी ने कहा, आप ही कैसी बातों को लेकर बैठ गए विजय, इतने सालों बाद हमारा बेटा यहाँ आया है, अभी इसे कुछ दिन यहाँ फ्री होकर टाइम बिताने दीजिए, थोड़े टाइम बाद खुद ही डिसाइड कर लेगा। शिवानी ने जैसे तैसे स्थिति को टाल दिया था। विजय ने उसकी बात पर हामी भरी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक कह रही है, कल शाम तुम्हारे वेलकम के लिए ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज की है मैंने, फिलहाल तुम्हारा सारा फोकस उस पर होना चाहिए। कल विजय ओबेरॉय अपने बेटे आयुष ओबेरॉय को पूरी दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करने वाला है। आयुष ने उनकी बात पर हाँ में सिर हिलाया और चुपचाप खाना खाने लगा। वो समझ गया था कि उसकी फैमिली उतनी भी नॉर्मल नहीं जितनी वो पिछले 5 सालों में दूर रहते हुए उन्हें समझ रहा था। पब में उस लड़के को सबक सिखाने के बाद आहान घर आ गया था। मोंटी ने पीछे से सारा मामला संभाल लिया था। रात के लगभग 2 बज रहे थे और आहान की आंखों से नींद दूर थी। उसकी आंखों के सामने बार बार चाहत का चेहरा आ रहा था। चाहत का इनकार उसके गुस्से की वजह बन रहा था। अचानक वो बिस्तर से उठा और गहरी सांसें लेने लगा।
नहीं, तुम मेरे गुस्से को शांत करोगी, ना कि मेरे गुस्से की वजह बनोगी। क्यों कर रही हो डॉल ऐसा? मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता। मुझे तुम्हारे साथ रहना है। जैसे पुरानी कहानियों में प्रिंस अपनी प्रिंसेस को किस करता था और उसे उससे प्यार हो जाता था, वैसे ही कुछ मुझे महसूस हो रहा है। जानता हूँ मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, पर मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मुझे इसी वक्त तुमसे बात करनी है डॉल, आई वॉन्ट टू हियर योर वॉइस, आहान ने बेचैनी से कहा। वो किसी साइको की तरह रिएक्ट कर रहा था। टाइम की परवाह न करते हुए आहान ने अपना मोबाइल उठाया और इस वक्त चाहत को कॉल लगा दिया। चाहत ने एक रिंग में उसका कॉल नहीं उठाया तो आहान ने वापस कॉल किया। रात को चाहत अपना फ़ोन साइलेंट करके सोती थी, इस वजह से उसे फ़ोन की रिंग सुनाई नहीं दी, लेकिन इन सब ने आहान के गुस्से को बढ़ा दिया था। अब किसी भी तरह की बैक काउंटिंग, म्यूज़िक सुनना या वॉक करना उसके गुस्से को शांत नहीं कर पा रहा था। नहीं, बात करने से कुछ नहीं होने वाला, मुझे तुम्हें देखना है, आई वॉन्ट टू सी माई डॉल राइट अवे, आहान ने तेज़ी से सांस लेते हुए कहा। इससे पहले कि उसका गुस्सा बेकाबू हो और वो अपने घर के ज़्यादा कीमती सामान को तोड़ फोड़ दे, उससे पहले आहान अपने घर के बाहर निकाला। उसे चाहत से मिलना था, इसलिए उसने अपनी गाड़ी बाहर निकाली और चाहत से मिलने के लिए इस वक्त निकल गया।